देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा राधिका रमन श्री कृष्ण बलराम श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर नेताय इस्कान पंजाबी बाग मंदिर में आप सबका प्रातःकाल श्रीमद् भागवत के सत्संग में स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के छठा स्कंद नवा अध्याय वीरतासुर का प्रकट्य अध्याय का नाम है। वीरतासुर का आविर्भाव कथा चलती आ रही है, सबने सुना है। इंद्र ने अपने गुरु का अपमान किया, सभा में सम्मान से बैठा था, सारे देवता बैठे थे, गुरु अंदर आया, बृहस्पति उठ के सम्मान नहीं किया, गुरु ने शाप भी नहीं दिया, चुपचाप चले गए। लेकिन इंद्र का श्रीहीन हो गया, इंद्र का सब चला गया। पहली शिक्षा, गुरु का अपमान, सब कुछ चला गया, इंद्र जैसे देवता का। और अपमान भी क्या किया, जबान से भी नहीं किया, सिर्फ उनके आने के ऊपर उठा नहीं, और अपने ऐश्वर्य और वैभव के कारण थोड़ी देर के बाद लगा कि मैंने गलत किया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये उसकी इंद्र की पश्चाताप जो इंद्र का है, इसलिए अभी भी भगवान ने इंद्र को नहीं छोड़ा, पश्चाताप किया। और तब मार्ग मिला कि आप विश्व रूप से अपना कार्य प्रयति का कराओ, अब तो गुरु जी नहीं है, तो तुष्टा आदित्य है, 12 आदित्यों में एक तुष्टा है, तुष्टा का बेटा विश्व रूप है, लेकिन वो देवता नहीं है, उसको प्रयति के लिए प्रार्थना करने के लिए गए इंद्र आदि देवता, तो उनको तो अपने चाचा के समाज समझा कि ये देवता हैं, मैं तो इनका भतीजा हूं, आदर किया। लेकिन जब इंद्र ने कहा कि आप हमारे पुरोहित बनो, तब उसने क्या कहा, पुरोहिति का काम ब्राह्मण के लिए उत्तम नहीं है, ब्राह्मण तो अयाचक होना चाहिए, खेत में गिरे हुए अन्न को खा ले, मंडी से गिरे हुए अन्न को लाए और खाए, मांग के खाना भी अच्छा नहीं है, प्रवृत्ति तो सबसे नीचे काम है, तो आप मुझसे ऐसा काम क्यों करना चाहते हैं। अयाचक ब्राह्मण का कभी उदाहरण देना हो तो माधवेंद्रपुरी है, कुछ नहीं मांगने गए 3 दिन, तो कृष्ण को दूध का लोटा लाना पड़ा। अयाचक ब्राह्मण सुदामा है, गया था कृष्ण से मांगने, लेकिन चुप करके बैठा, अब कृष्ण को मांगना पड़ गया कि मुझे दो कुछ, तुम्हारे पास है क्या, गया मांगने था लेकिन मांगा नहीं। श्री कृष्ण मांगने लगे, मेरे लिए क्या लाए हो मुझे दो। ये अच्छा याचक ब्राह्मण है, दोनों को भगवान मिले जो कुछ नहीं मांगता है। ये विश्वरूप बहुत बड़ी उत्तम शिक्षा दे रहा है। फिर भी आप मेरे पूर्वज हो, बड़े हो, बड़े हो, मैं आपका आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, मैं आपका पुरोहित बनता हूं और यज्ञ कराया। उसके पास नारायण कवच था, नारायण कवच उसी ने दिया है ना, इसके आगे अध्याय में गया है। उसके पास नारायण कवच था, अब विश्वरूप का नाना काल वो है दैत्य, दिति के पुत्रों में से है, असुरों में है उसका नाना। उस नाने के वंश का उसके ऊपर थोड़ा सा प्रभाव जो था, उसके कारण यज्ञ के अंदर एक तो इंद्र के लिए आहुति दे और दो के बाद एक नाना के घर को भी दे दे, ये उसने। इसलिए पुराने जमाने के लोग नाना और दादा दोनों का खानदान देखते थे किसी के काम करने से पहले, बहुत बड़ी बुद्धिमानी होती थी कि नौ पीढ़ी तक नाना का प्रभाव रहता है। ये कहानी हमारे में कहावत होती थी, नौ पीढ़ी तक नानी खींचती है, तो नाना के प्रभाव से उसके अंदर जो जो दैत्यों का थोड़ा सा, इतने बड़े महान ब्राह्मण के कार्य करने, इंद्र का पुरोहित बनने के बाद भी वो जो पुराने संस्कार थे वो खींच रहे थे। हम भक्ति करते हैं यहां अच्छी तरह से, लेकिन पुराने संस्कार कभी कभी वो विश्वरूप की तरह पीछे खींचते, उधर मन जाता है, एक आहुति उधर भी डालते, आगे ले जाके डाल के आते हैं। देखा है बहुत से भक्तों के जीवन में ऐसे दिखेगा कि ऐसे ऐसे भाव होता है, उस भाव का खत्म करना चाहिए। वो भाव खत्म नहीं होगा तब तक आदमी आगे नहीं बढ़ेगा। तो इंद्र ने उसके सर काट दी, ब्राह्मण हत्या हो गई। इंद्र ने ब्राह्मण हत्या का पाप चार जगह बांट दिया, लेकिन तुष्टा ने अपने पुत्र के वध को नहीं भूला। पिता था बोला, मेरे बेटे को ले गए थे अपना गुरु बनाने के लिए, पुरोहित बनाने के लिए, लेकिन उसको मार दिया, ये तो अपराध है। उस अपराध के लिए इंद्र से लड़ने नहीं गया, भगवान की आराधना की। आदित्य था ना, आदित्य का बेटा था, देवता था, देवता जब संकट में है तो भगवान के पास जाते हैं। यज्ञ किया, यज्ञ विष्णु है, लेकिन यज्ञ में भगवान को प्रार्थना की कि मेरे बेटे को अगर इंद्र ने मारा है तो मुझे इंद्र का शत्रु चाहिए जो इंद्र को मारे। यज्ञ शुरू हुआ, लेकिन पढ़े लिखे सत्ययुग के पंडित अक्षर के उच्चारण करने में त्रुटि हो गई। इसी के ऊपर प्रभुपाद ने लिखा है कि आजकल के यज्ञ का क्या लाभ, जब पुराने यज्ञ में थोड़ी गलती से सब काम चौपट हो गया। तो उस यज्ञ से फल तो निकला जो चाहिए था, एक पुरुष निकलना जिसको इंद्र का दुश्मन होना चाहिए, ऐसा जो अर्थ था इंद्र अरि, उसके बदले शब्द में सिर्फ मात्रा का अंतर होने के कारण जो पैदा हुआ उसका इंद्र शत्रु है, अथवा वो इंद्र के द्वारा मारा जाएगा। निकला बड़ा असुर निकला, और निकलते ही चारों दिशाओं को ढक दिया, इसलिए उसका नाम हुआ वृतासुर। आवृत, आवृत मतलब ढकना, जिसने चारों दिशाओं को ढक दिया। लाल आंखें हैं, बाल लाल ऐसे, और इतना बड़ा उसका काया है कि आकाश के बादल ऐसे हिलते हैं, बादल हिल जाते हैं। वृत्रासुर के अब ये लीडर हो गया, किसका? दैत्यों का, असुरों का लीडर हो गया इंद्र। डर गया, अब क्या होगा? मालूम है मेरे मारने के लिए पैदा किया है। तब इंद्र देवताओं को लेकर भगवान की प्रार्थना करने के लिए गया कि अब क्या करूं। और उन प्रार्थनाओं में एक ये श्लोक है जो आज हम पढ़ेंगे, ये देवताओं की प्रार्थना है, इंद्र आदि की प्रार्थना है। और ये प्रार्थना भगवान विष्णु को कर रहे हैं और उनका गुणगान कर रहे हैं और अपनी अपनी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है ये बता रहे हैं। इस दुनिया में, भौतिक जगत में है ना, तो हम कैसे समझ सकते हैं? तो ये देवताओं की प्रार्थना भगवान विष्णु को है। तब भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे, तब इंद्र को रास्ता बताएंगे वृत्रासुर के वध का। माता जी, आप में से कोई बताएगा वृत्रासुर कौन था? हाँ, क्या बोलो, नाम बोलो, क्या बोला बेटी? असुर का मतलब राक्षस है। ऐसे तो ट्रैक्टर असुर है, ट्रैक्टर भी असुर है। 100 आदमियों का खाना खत्म कर दिया, 100 आदमी खेत में जोत के खाना कर। ये ट्रैक्टर असुर जब से पैदा हुआ है लोगों का भोजन ट्रैक्टर असुर। ये ट्रैक्टर असुर है बहुत बड़ा, कितने आदमी को मारा है, कितने के पेट के ऊपर लात मारी है। और ये जो बड़ा भीम खड़ा होता है रास्ते में, देखा है जो जमीन खोदता है इसका, ये भीमासुर है। पर ऐसे बहुत असुर हैं। बोलो बोलो माता जी। चित्रकेतु था पूर्व जन्म का, जाए माता जी ने अच्छी बात बताई। चित्रकेतु था 11वें अध्याय के इसी स्कंद के 11वें अध्याय के 4 श्लोक वृत्रासुर चतुर्श्लोकी कहलाती है। वृत्रासुर चतुर्श्लोकी है, साधु समाज में वैष्णव आचार्य उसको वृत्रासुर चतुर्श्लोकी कहते हैं। और इतनी सुंदर है, दास दास अनुदास वहां लिखा है कि वो दिन कब आएगा कि भगवान मैं आपके दासों के दासों के दास बनूंगा। ये जो 4 श्लोक हैं बड़े सुंदर हैं और इसको कभी देखना चाहिए। वृत्रासुर 11वें अध्याय में आएंगे मेरे ख्याल में, मैं आज देख रहा था, थोड़ा सुबह देखा था। तो क्या रास्ता बताएंगे भगवान विष्णु वृत्रासुर से मुक्त होने का? दधीची ऋषि के पास जाओ, उसकी अस्थियां लो। इसका मतलब वो मरेगा तब अस्थियां देगा ना। हा? तो अस्थियां कैसे देगा, हड्डी कैसे निकाल के देगा अंदर से? भाई कोई हड्डी दे सकता है क्या? भगवान ने काम भी मुश्किल बताया था, जाओ उससे हड्डियां मांगो, उन हड्डियों से वज्र बनाओ। तो क्या बोला उसने, दधीची ने क्या बोला? क्या बोला, कुछ याद है किसी को? बोला, देवता हो, देने वाले हो, लेने आए हो, क्या बात है तुमको? और वो भी मेरा शरीर लेने आए हो? कोई आदमी जीते जी अपने प्राणों से कितना प्यार प्रेम करता है, कैसे देगा अपना शरीर? अब इंद्र कहता है, आप साधु हो, आपको क्या संसार में आ सकती है, आप कुछ भी कर सकते हो, अपना शरीर दे दो। अरे फिर तू अपने शरीर की रक्षा के लिए तू तो डर रहा है वृत्रासुर से और मेरा शरीर मांगने आया। मैं आश्चर्य है, आप उस स्थान पे गए हैं जहां दधीच ने अपनी हड्डियां दी थी इंद्र को? देखिए, देखा स्थान, नैमिषारण्य गए हैं कभी? नैमिषारण्य से 1 किलोमीटर दूर उधर ही मिश्रित तीर्थ है, इसका नाम है मिश्रित तीर्थ। वहां दधीजी की हड्डियां इंद्र मांगने आया तो उसके उसने पूरा दही और चीनी शरीर के ऊपर लगाया, फिर गाय ने उसको चाटा और फिर जब उसकी हड्डियां ली तो इंद्र को कहा कि तुमने ब्राह्मण हत्या की है, अब तुमको सम तीर्थों का स्नान करना पड़ेगा। तब इंद्र ने सब तीर्थों को वहां प्रार्थना की तो सब तीर्थ उस कुंड में आए, इसलिए उसका नाम है मिश्रित कुंड। तो वहां फिर स्नान हुआ है। ये नैमिषारण्य के पास में एक किलोमीटर की दूरी थी, उसका दूरी पे है, उसका नाम ही है मिश्रित तीर्थ। वहां दधी जी का एक बना के रखा है चित्र, चित्र नहीं मतलब ऐसे विग्रह बना रखा है, और गाय चाट रही है उसको, ऐसे देखने को मिलता है। तो दधी जी भी ब्रह्म हत्या है, अरे कृष्ण, तो अपने शरीर का अंग दे दिया दधी जी ने। इसलिए कभी लोग पूछते हैं कि भाई ये आजकल आंख मांग रहे हैं, किडनी मांग रहे हैं, देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। तो ये भागवत में लिखा है कि अच्छे काम के लिए अंग दिया जा सकता है। तो मेरा उसके ऊपर कमेंट्री ये है कि इंद्र मांगे तो देना चाहिए, बंदर को नहीं देना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि इंद्र को दोगे तो कम से कम भगवान की आज्ञा के अनुसार काम करेगा, लेकिन किसी बंदर को आंख दोगे और दूसरे को आंख मारेगा तो क्या फायदा। देने का तो यहां विधान मिलता है कि दे सकते हैं, लेकिन किसको देना चाहिए इसका कौन निर्णय करेगा। इसके लिए अपने परिवार में देने में कोई आपत्ति नहीं है इसका लगता है कि भाई अपने घर में दे रहे हैं, मालूम है कि भाई को देना है कि पिता को देना है, सही जगह पे जा रहा है तो दे सकते हैं। ऐसा यहां से ये एक संकेत मिल रहा है कि पहले भी ऐसे अंग दिया जाता था। तो ये श्लोक पढ़ना तो मुश्किल है, फिर भी देखिए कोशिश करते हैं। नाही विरोधा उभयम् भगवत्या अपरिमिता अपरिमिता गुण गुण ईश्वरे अनवघाया महात्मये अरवाचीन विकल्प वितर्क विचार परमाणा अभास कुतर्क शास्त्र कलीलांत करणाश्रय दुर्वृग वादिनाम विवादानवसर उपरता समस्त मायामय केवल एवात्मा मायाम अंतरधाय को नव अर्थो दुर्घट इव भवति स्वरूप द्वया भावात। तो ये देवताओं की प्रार्थना है और भगवान विष्णु के सामने खड़े हैं और भगवान विष्णु के गुणगान कर रहे हैं। तो सोचो तो देवताओं को भगवान विष्णु का दर्शन उपलब्ध था, उसके सामने खड़े होकर प्रार्थना कर सकते थे और उन्हीं को प्रार्थना कर रहे हैं और वो उनको उत्तर भी देंगे। इसका अर्थ अनुवाद पढ़ते हैं प्रभुपाद जी के द्वारा। हे श्री भगवान, देवता कह रहे हैं, हे भगवान श्री हरि, सभी विरोधों का आप में तिरोधान होता है। इसका मतलब दुनिया में अच्छा और बुरा आदमी होगा तो ये आप कहेंगे ये अच्छे आदमी है, ये बुरे आदमी है, लेकिन भगवान में अच्छाई और बुराई में कोई अंतर नहीं है, दोनों का तिरोधान आप में होता है। हे भगवान, क्योंकि आप परम पुरुष हैं, अनंत दिव्य गुणों के आगार हैं, परम नियंता हैं ईश्वर, अतः आपकी असीम महिमा बद्ध जीवों की कल्पना के परे है। देवता भी बद्ध जीव हैं, मुक्त तो नहीं है, बद जीव है। वो अपनी स्थिति बता रहे हैं। इससे हमें क्या सीखना है, जब इंद्र भगवान को कह रहा है कि आप ईश्वर हैं, आप नयनता हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपकी महिमा हमारे लिए समझना मुश्किल है, तो फिर हम कौन से बाग की मूली है, और कहें कि भगवान हमारे को रात आया था मिलने के लिए, और भगवान हमसे बात करके गया, हम भगवान के बारे में सब कुछ जानते हैं, आप प्रचार करने जाते हैं, बोला ये भगवत गीता है, बोला हम सब जानते हैं, मूर्ख क्या जानते हो तुम। लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो हम सब जानते हैं, भगवान भगवत गीता सब जानते हैं, भगवत गीता का भय भी नहीं जानते हैं। इंद्र कह रहा है कि हम बद्ध जीव नहीं जानते हैं आपकी महिमा को। इंद्र सच कह रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता के 10वें अध्याय में, नमे विधु सुर गणा, देवता मुझे नहीं जानते हैं। और इंद्र को सुरेश कहते हैं, सुरों का ये देवताओं का अधिपति। भगवान कहते हैं मुझे देवता नहीं जानते, और इंद्र कहता है कि हम नहीं जानते हैं, लेकिन मूर्ख दुनिया वाले कहते हैं हम भगवान को जानते हैं। जानते नहीं, हम भगवान हैं। एक स्टेप और, भाई भगवान को जानते नहीं मैं, हम भगवान हैं। अब बताइए, जो ऐसी कल्पना करते हैं, अगर आप भगवान हैं तो आपको जानना मुश्किल नहीं है, फिर तो ठीक है, लेकिन असली भगवान को जानना मुश्किल है, आपको जानना मुश्किल नहीं है। तो ये इंद्र से सीखना चाहिए कि इतने बड़े देवता भी भगवान की प्रार्थना करते हैं, तो हमारे को निरंतर भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। ये एक संकेत हमारे लिए है कि निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। अब आगे इंद्र क्या कहते हैं, अनेक सिद्धांतवादी फिलोसॉफर्स, अंग्रेजी में शब्द है फिलोसॉफर्स, मॉडर्न थियोलॉजियंस, तो अनेक सिद्धांतवादी बिना जाने के वास्तव में सत्य क्या है, सत्य तथा मिथ्या के विषय में तर्क करते हैं। उनके तर्क झूठे होते हैं और फैसले अनिर्णित हैं, कोई निर्णय नहीं है, क्योंकि उनके पास आपको जानने का कोई वैद्य प्रमाण नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग कहते हैं ये सत्य है ये झूठ है, लेकिन असली सत्य क्या है, कसौटी क्या है जिसके ऊपर किसी को सत्य कहा जाए किसी को असत्य कहा जाए, कोई कसौटी होनी चाहिए ना। तो कसौटी तो आप हैं, परम सत्य तो आप हैं, आपको तो जानते नहीं है, उनके बगैर कोई निर्णय निकाल देते हैं तो ये सारे निर्णय झूठे हैं। जितने निर्णय दुनिया ने बना के रखे हैं ये सब निर्णय सत्य नहीं है, क्योंकि परम सत्य को तो कोई उनमें से जानता ही नहीं। ये इंद्र कह रहा है कि जो परम सत्य को नहीं जानते हैं उनके सारे निर्णय झूठे हैं। अतवे ये नहीं समझ पाते कि सत्य क्या है, यही नहीं सही सही निष्कर्ष प्राप्त करते समय उनकी उत्कंठा दूषित रहती है, जिससे उनके सिद्धांत आपका वर्णन करने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि आप उनकी भौतिक बुद्धि से परे हैं। वैसे ज्ञान जो होता है ना, ज्ञान जिसको ज्ञान कहते हैं, वो सत्वगुण से उत्पन्न होता है। कहां से उत्पन्न होता है? सत्वगुण से। देवता सत्वगुण में है प्राय, और भगवान तीनों गुणों से परे हैं। तो जो सतोगुण का ज्ञान जिसके पास है वो गुणा अतीत भगवान का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है? संभव नहीं है। तो उनकी सारी चेष्टा बेकार की है। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में 2 बार कहा है कि तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ अगर तुम्हें मुझे समझना है तो। निस्त्र गुण भव अर्जुन, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ अगर मुझे समझना है तो, नहीं तो कोई रास्ता नहीं है मुझे समझना के। तो गुणों के अंदर रह के सतो गुण में रह के भी नहीं समझ सकते हो। सतो संजायते ज्ञानम, उसमें ज्ञान होगा लेकिन गुणातीत ज्ञान उसमें नहीं है। तीनों गुण से, इसलिए भक्त भगवान के तीनों गुणों से परे होता है। निस्त्रगुणम मम निकेतनम, जो मेरे घर में रहते हैं वो तीनों गुणों से परे हैं। भगवान कहते हैं 11वें स्कंद में उद्धव को, जो मेरे घर में रहते हैं तीनों गुणों से परे हैं। भगवान का घर भगवान का मंदिर है, जो यहां रहते हैं तीनों गुणों से परे हैं। यहां तीनों गुणों का प्रभाव नहीं है, बाहर जाने से होता है, इसलिए अधिक से अधिक समय रहने ठीक, नहीं तो भगवान की सेवा में लगा रहना तो तीनों गुणों से परे है, नहीं तो आदमी किसी न किसी गुण के प्रभाव में आएगा। हमारी मान्यता यह है कि इस चार दीवारे से बाहर निकल के चप्पल तक जाते जाते रजोगुण आ जाता है, चप्पल मिलने न मिलने के ऊपर तमोगुण आ जाता है। ये बाहर ही खड़ा है, जूता स्टैंड पे दोनों गुण खड़े हैं, ऐसे बाहर निकलो तो पकड़े, गाड़ी गलत पार्क हुई किसी ने पास में खड़ी की तो गुण वहीं बाहर खड़े हैं, छोड़ के आते हो अंदर आते हो तो कीप योर शूज एंड व्यूज आउट। अंदर मंदिर में आओ तो अपने जूते, जूते उतारने का मतलब है कि असल में जो तुम्हारे दिमाग में ये जूते समाये हुए बाहर निकाल के इसका अर्थ ये है कि तुम्हारे गुणों को पीछे छोड़ के आओ, यहां छोटा बन के सिंपल बन के निमर बन के मंदिर में आओ। पर टोपी भी उतारते थे, जूता भी उतारते थे, टोपी भी उतरती थी, जूता भी उतार के आते थे लोग, राजा महाराजा पगड़ी उतार के फिर आते थे मंदिर में भगवान के सामने। भगवान एक को पगड़ी पहनना, और कोई पगड़ी नहीं पहन सकता उसके सामने, ये मर्यादाएं थी। हरे कृष्ण। वैकुंठ चंद्र क्या बोल रहा है, पगड़ी है ही नहीं बोलता है हमारे उतार के क्या आएंगे तो वे ये आपका वर्णन करने में असमर्थ है रहते हैं, क्योंकि आप उनकी भौतिक बुद्धि से परे हैं। आप अद्वितीय हैं, अतः आप में करणीय तथा अकरणीय, सुख तथा दुख जैसे विरोध नहीं है। आपकी शक्ति के द्वारा आपके लिए क्या असंभव है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपकी स्वाभाविक स्थिति द्वैत से रहित है, आप द्वैत आप में नहीं है, असमूह समूह हम सर्वभूतेषु, अतः आप अपनी शक्ति के प्रभाव से सब कुछ कर सकते हैं। इंद्र ऐसे आखिर में क्यों बोल रहा है कि आप हमारी भी रक्षा कर सकते हैं, ये भाव है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, वृत्रासुर क्या है आपके लिए। तो ये इन श्लोक का अर्थ ये है, इसके शब्द अर्थ बहुत से शब्द आपको समझ में आएंगे अगर आप देखेंगे तो। हमारे पास समय कम है, देखो तर्क वितर्क ये सब शब्द आपकी भाषा के हैं, तो ये इसका तात्पर्य पढ़ेंगे, थोड़ा छोटा सा है, समय के अंदर हो जाएगा। आत्मनिर्भर होने के कारण, आत्मनिर्भर होने के कारण का मतलब सेल्फ सफिशिएंट आत्मा राम, भगवान को किसी से कुछ लेना नहीं है, उसके कारण दिव्य आनंद से ओतप्रोत है भगवान, आत्मा राम है, उसी को किसी से कुछ लेना नहीं है, कुछ चाहिए नहीं, वो अपने आप में परिपूर्ण है, ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम, वो पूर्ण है। उस हम जिसके पास नहीं है उसको कुछ लेने की इच्छा होती है, लेकिन भगवान परिपूर्ण है। वे दो प्रकार से आनंद उठाते हैं, भगवान दो प्रकार से आनंद उठाते हैं, जब वे प्रसन्न होते हैं और जब वे दुखी होते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं तब भी आनंद होता है उनको, और जब दुखी होते हैं तब भी आनंद होता है, क्योंकि भगवान के अंदर सुख दुख का कोई भेद है ही नहीं। कैसे? उनमें भेद तथा विरोध कर पाना कठिन है, क्योंकि उनका उदय उन्हीं से होता है, भाई दुख भी उन्हीं से होता है, सुख भी उन्हीं से होता है, कहीं और से तो आता नहीं है, तो उसी के अंदर से निकलता है, तो उसमें उसके लिए तो दोनों एक जैसे ही है, बहुत मुश्किल फिलॉसफी है। श्री भगवान समस्त ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य तथा प्रभाव के आगार हैं, ये तो भगवान शब्द का अर्थ है। उनकी शक्तियों का वार पार नहीं है। वार पार क्या मतलब? उनकी लिमिट आर पार नहीं, वार पार लिखा है यहां। वे समस्त दिव्य गुणों की खान है, इस संसार का कोई भी दुष्कृत्य उनमें रह नहीं सकता। वे दिव्य तथा चिन्मय हैं, अतः उन पर भौतिक सुख तथा दुख की धारणाएं लागू नहीं होती। यदि भगवान में विरोधी बातें मिलें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। वास्तव में ये कोई विरोध नहीं है, उनकी पूर्णता का ही यही अर्थ है। सर्वशक्तिमान होने के कारण उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के विषय में बद्ध जीवों के तर्क लागू नहीं होते। वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए उनके शत्रुओं का प्रसन्नतापूर्वक वध करते हैं, उनके संहार तथा पालन दोनों में प्रसन्नता होती है। वो वृत्रासुर को मार रहे हैं तो भी वृत्रासुर की इच्छा पूरी कर रहे हैं, वृत्रासुर भी खुश है, भगवान भी खुश है, और इंद्र की रक्षा कर रहे हैं तो इंद्र भी खुश है और भगवान भी खुश है, तो दोनों में आनंद ले रहे हैं। वृत्रासुर स्वयं कहता है इंद्र को, मुझे जल्दी मारो, तुम मारोगे तो मुझे भगवान मिलेगा, और तुम यहां रहोगे मेरे मरने के बाद तो दुख भोगते रहना, वो ऐसे बोलता है। ऐसी अद्वितीयता न केवल भगवान पर वरना उनके भक्तों पर भी लागू होती है। वृंदावन में व्रजभूमि की बालाएं गोपियां भगवान श्री कृष्ण के सहचार्य का दिव्य आनंद प्राप्त करती है, और जब कृष्ण तथा बलराम वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो उनके वियोग में भी वे वैसे ही दिव्य आनंद का अनुभव करती है। भौतिक कष्ट या आनंद का श्री भगवान अथवा उनके भक्तों के लिए कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यद्यपि कभी कभी ऊपर से ये कहा जाता है कि वह कष्ट में है या प्रसन्न है, जो आत्माराम है वो दोनों स्थितियों में आनंद मग्न रहता है। जो अभक्त है वे श्री भगवान के इन विरोधों को नहीं समझ सकते, अतः भगवद गीता में भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजान आती, सेवा से ही दिव्य लीलाएं समझी जा सकती हैं। अब भक्तों के लिए वे कल्पनीय हैं। अचिंत्या खलह ये भावान संस्तकरेण योजिएत, अब भक्तों के लिए परमेश्वर तथा उनके रूप नाम लीलाएं तथा वैशिष्ट्य सभी अकल्पनीय है। मनुष्य को चाहिए कि तर्क के द्वारा वे ऐसे सत्यों को समझने का प्रयास ही न करें। तर्क से परम सत्य भगवान के विषय में सही निष्कर्ष प्राप्त नहीं हो सकता। कुछ समझ में आया? कैसे समझ में आएगा भगवान, कैसे समझ में आएगा? सेवा से। कौन आया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से मिलने के लिए? वाइस चांसलर मदन मोहन मालवे, वो वाइस चांसलर हिंदू यूनिवर्सिटी का, और भगवान के विषय में तर्क वितर। मदन मोहन मालवे बहुत बड़े भागवत के सुनने के रसिक थे और भागवत सुना करते थे बहुत जगहों से। मैं कहां पढ़ रहा था, अखंडानंद महाराज को उसने कई बार बुला के भागवत सुननी है आपसे, और सुनता था। और मेरे ख्याल में जन्मभूमि के मंदिर में भी उनका मदन मोहन मालवीय है ना, तीन है ना, वो है और हनुमान प्रसाद जी है और ये दो तीन है। तो इन लोगों ने कृष्ण भक्ति में उनका बहुत ज्यादा जो है वो भाव था, लेकिन फिर भी वो थे तो दार्शनिक और ऐसे विद्वान थे। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती के बारे में सुना कि ये बहुत बड़े कृष्ण भक्ति के आचार्य हैं, तो उनको से मिलने के लिए गए कि भाई आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं श्री कृष्ण के विषय में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनको क्या कहा? स्वयं ने कहा कि किसी से कहलवाया कि अभी बिजी हैं, थोड़ी देर के बाद मिलेंगे, लेकिन तब तक अगर आपके पास समय हो तो बर्तन पड़े हैं अंदर भगवान के सेवा के, उनको साफ करो, ऐसे कहा। अब वाइस चांसलर ना, कुलपति यूनिवर्सिटी का, और उस वक्त में उसका भारत में बहुत बड़ा सम्मान था, मदन मोहन मालवीय का नाम सब जानते थे, लेकिन एक गुरु के, उसको गुरु समझ से उसके, उससे सीखने के लिए गया था, तो उसके आदेश का पालन किया। उसने ये नहीं कहा कि मैं वाइस चांसलर हूं, मैं कि बर्तन धोने के लिए आया हूं क्या, उसने नहीं कहा, ये गया बर्तन धोए, घिसके पूरे किए। जब बाहर निकला तो भक्ति सिद्धांत सर ने कहा कि अब आइए, कुछ पूछना है, क्या पूछना चाहते हैं? नहीं बोला, जो पूछना था वो समझ में आ गया, जो पूछना था वो समझ में आ गया। अब उस आदमी ने अगर ये कहा तो वो कोई गांव का तो था नहीं कि उसको भाई बर्तन रगड़वाए और वो भाग के जाना चाहता था, लेकिन उस सेवा में परमात्मा ने उनके हृदय से उनके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। तो भगवान की सेवा से भगवान समझा जा सकता है, तर्क वितर्क से भगवान नहीं समझा जा सकता। भगवान के अंदर दोनों विरोध एक ही समय में दिखते हैं। सुबह सवेले मां यशोदा ने काला धागा कमर में बांधा है कि नजर न लगे, और फिर रस्सियां पूरे वृंदावन की इकट्ठी करके उसकी कमर बांध रही है और रस्सियां छोटी पड़ रही हैं। वो ही कृष्ण मुट्ठी भर कमर है, काला धागा उसी मां के हाथ का बंधा हुआ यशोदा के अभी भी दिख रहा है, लेकिन बाकी रस्सियां उनको बांध नहीं पा रही। ये दोनों विरोध एक ही जगह पड़े। गोपियों के संग में रासलीला करते हैं और सब गोपियों को छोड़ के चले गए हैं, तब भी बांसुरी बजा के अपने आनंद में है, उनको उन दोनों के साथ रहने या अलग रहने में कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई द्वेष ये नहीं भाई अकेला हो गया अब क्या करूं, उसमें भी आनंद है। ये वैराग है, सबसे बड़ा वैराग अपना है। ऐसे कई एक ही समय श्री कृष्ण के अंदर अथवा परम सत्य के अंदर विरोध दिखते हैं, जो विरोध नहीं है, दिखते हैं विरोध लेकिन विरोध नहीं है, क्योंकि दोनों हालतों में सबका भला ही करते हैं, वो किसी का अहित करते ही नहीं। तो भगवान के इस चीज को समझने के लिए, माखन चोरी करते हैं फिर भी पूजा करते हैं, चोरी करना कोई अच्छा काम तो नहीं है, रण छोड़ के जाते हैं, लड़ाई छोड़ के जाते हैं फिर भी बदनाम नहीं होते हैं, पूजा होती है रण छोड़ की, ये उनके विरोध सारे उनकी महिमा का कारण बनते। त्रिलोकी नाथ होके अर्जुन के घोड़े हांक रहे रथ के ऊपर बैठ के, लेकिन फिर भी पार्थ सारथी के नाम से पूजा होती है। भाई किसी घोड़े चलाने वाले की पूजा होती है क्या कहीं? हाँ, घोड़े बगी चलाने वाले की कहीं पूजा तो नहीं होती ना। तो ये सब उनके अंदर होने के कारण के बाद भी वो अपने आप में परिपूर्ण है, उनको छोटे होने में कोई आपत्ति नहीं है। वो छोटे हैं तब भी भगवान हैं, वो जब हैं जैसे हैं, लेकिन उनको समझना है हमको तो उसके लिए तर्क वितर्क काम नहीं आएंगे, उनके लिए केवल सेवा, और वो भी भक्तों के निर्देश में, भक्तों के संग में, हृदय के अंदर ये सब जो अभास हैं, जो विरोध हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे। हरे कृष्ण। कोई कोई इसके ऊपर प्रश्न है, किसी का सुझाव है? तो थोड़ा फिलोसॉफिकल है टॉपिक, नहीं समय थोड़ा था, नहीं तो एक एक शब्द के अंदर अंग्रेजी से पढ़ेंगे तो बहुत से रहस्य है इसमें। भगवान नहीं, भगवान के भक्त, उसमें भी द्वैत, उसको क्या द्वैत नहीं रहता है, द्वंद्व मोह मुक्ता भजन, क्या 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 शब्द है, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्व अतीतो विमत्सर। भगवान के भक्त भी द्वंद्वों से अतीत हैं। भक्तों के अंदर भी विरोध दिखता है, लेकिन विरोध है नहीं। क्यों नहीं है भक्तों के अंदर विरोध दिखता है, विरोध नहीं है, ऐसे क्यों है? भाई गुस्सा करते हुए भक्त दिखते हैं कभी, प्रभुपाद जी कभी डांटते हुए दिखते थे, और कभी बच्चों को प्रेम करते हुए भी दिखते थे। दोनों विरोध है ना, लेकिन फिर भी उनमें विरोध ये नहीं है, क्यों? कि दोनों में वो आनंद लेते हैं और दोनों में दूसरों को भला चाहते हैं। उसका अपना स्वार्थ नहीं है, अपना उसमें कोई स्वार्थ नहीं। श्री कृष्ण की सेवा में अर्जुन की तरह लड़ना पड़े, लड़ने का कार्य है, कोई सराहनीय नहीं है, मार रहा है, लेकिन भगवान की सेवा में कर रहा है। तो वो आज हम अभी तक भगवद गीता को पढ़ने आ रहे हैं, 5000 साल से पढ़ रहे हैं कि अर्जुन ने इसको इसको तीर से मारा, इसको तीर से मारा, ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान की सेवा में किया और उसका उसमें कोई दोष नहीं है, वो इंद्रासन के ऊपर भी जाके बैठा है अर्जुन, आधे इंद्रासन के ऊपर भी बैठा, फिर भी दोनों उसके लिए समान थे। तो ये स्थिति भक्तों के, अब इससे हमको क्या सीखना चाहिए? हमारी स्थिति, प्रभुपाद लिखा है भक्तों की भी ऐसी स्थिति होती है, प्रभुपाद के अंदर ऐसे कुछ चीजें देखनी चाहिए और कुछ और आचार्यों के अंदर ऐसी चीजें देखनी चाहिए कि हर हालत में वो कैसे सुखी थे। किसी का कोई सुझाव किसी के दिन आता है कोई अंदर ऐसा विचार कि भक्तों में भी विरोध? प्रभुपाद ने तो गोपियों का उदाहरण दिया कि भगवान से साथ भी और बिछड़ने भी, वो तो हमेशा भगवान के संग में थी, उनके लिए विरह भी बहुत प्रेम की परिकाष्ठा थी। किसी का कुछ सुझाव, किसी का कोई विचार आ रहा है? हाँ
उनको कुछ नहीं कहा, आखिरली बार पुलिस बुलाई और उनको भगवा दिया, और थोड़े दिन के बाद उन्हीं पंडों को बुला के प्रसाद करवाया, और वो प्रसाद पाने के बाद प्रभुपाद जी के चेले बन गए,
प्रभुपाद
प्रभुपाद जी के शिष्य बन गए।
सुन समझ गए सब, प्रभुपाद जी ने के भक्तों को कुछ लोकल लोग परेशान कर रहे थे दो तीन बार, तो प्रभुपाद ने पुलिस बना मंगवा के उन परेशान करने वाले को पुलिस के हवाले किया, और दो पांच सात दस दिन के बाद उन्हीं सब पंडितों को बुला के फिर भोजन कराए और प्रसाद खिलाया। तो उनके हृदय में कोई उनके प्रति द्वेष नहीं था, उस परिस्थिति के अनुसार उनने वो कार्य किया, लेकिन उनमें उनके विचार में कोई किसी के लिए न अच्छाई थी न बुराई थी। और कोई ऐसा किसी के मन में आचार्य जी? सॉरी, तीन गुणों से कैसे पार आ जाते हैं? भगवद गीता में श्लोक है, अर्जुन ने पूछा है कि तीनों गुणों से कैसे पार हो जाएं, और भगवान श्री कृष्ण ने क्या उतार दिया है? माम च अविभिचारे न भक्ति योगे न सेवते स गुणान समतय तेतान ब्रह्म भूया या कल्पते। जो मेरी अनन्य भक्ति करेगा, अविभिचारी भक्ति करेगा, वो तीनों गुणों से अपने आप मुक्त हो जाएगा। ये इसका एक सामान्य अर्थ ये है, जब तक आदमी तीनों गुणों के अंतर्गत होता है तब तक उसमें द्वंद रहेंगे। द्वंद तीनों गुणों के कारण है, जैसे ही आदमी तीनों गुणों से ऊपर जाएगा तो द्वंद अतीत हो जाएगा। तो भगवान तो तीनों गुणों से परे हैं, इसलिए उसको निर्गुण बोलते हैं। भगवान के भक्त भी तीनों गुणों से ऊपर हैं, हो जाते हैं, इसलिए वो भी निर्द्वंद हो जाते हैं। तो इसका एक जो जो बॉटम लाइन सिद्धांत ये हो गया कि द्वंद्वों से मुक्त होने के लिए तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। जो त्रिगुण अतीत है वो द्वंद्व मुक्त है, उसमें द्वंद्व नहीं रहेंगे। दिखेगा द्वंद्व लेकिन उसके अंदर द्वंद्व नहीं है, क्योंकि अच्छा बुरा ये तो गुणों के कारण दिखता है, उसमें गुणों का प्रभाव ही नहीं है। तो इस सारे का बॉटम लाइन ये है कि तीनों गुणों से ऊपर व्यक्ति केवल भगवान को जान सकता है, वही द्वंद्वों से मुक्त हो सकता है। और क्योंकि भगवान पहले ही द्वंद्व तीन गुण अतीत है, इसलिए उनके अंदर तो विरोधाभास होता ही नहीं है, और भक्त जो वहां पहुंचता है उसके अंदर भी नहीं रहेगा। तो अभी हमारे लिए चैलेंज क्या है, तीनों गुणों से मुक्त होने के लिए अनन्य भक्ति करना भक्तों के संग में, तो ये स्थिति भी प्राप्त होगी। हरे कृष्ण। प्रभुपाद के जीवन में ऐसे बहुत से और उदाहरण भी मिलेंगे, क्यों क्रोध के 5 मिनट बाद वैसे ही स्थिति में सामान्य उन्हीं लोगों से ऐसे व्यवहार करना, कोई उसे वो स्थिति थी नहीं। ऐसे बहुत से मिल सकते हैं, क्लास में तो अभी नहीं याद आते, लेकिन चर्चा करेंगे तो और भी आचार्यों में बहुत सी ऐसी चीजें मिल सकती। श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।